ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। और सामने आ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, पीछे क्यों जाते सब? सब पीछे बैठते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, पंचम स्कंद प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 5। 5 नंबर लिखा है ना? ओके। श्री सुकोवाच। बाणमुत्तं भगवत उत्तम, ये पद्य में लिखा है, मैं केवल पढ़ूंगा आपको। श्री सुकोवाच बाढ़मुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दस्य आवेशितचित्तसु भगवत परमहंसदैतकथाङ्किञ्चित् अन्तरायविहिताङ् स्वाङ् सीवतमाङ् पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। और एक बार सुन लीजिए। श्रीशुकोवाच बाढ़मुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दस्य आवेशितचेतसो भगवत परमहंसदैतकथां किञ्चित् अन्तराय विहितां स्वां सीवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। शब्दार्थ। श्रीशुकोवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बोले, बाढ़म ठीक है, उक्तम आपने जो कहा, भगवतः भगवान का उत्तम श्लोकस्य जिनकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों से की जाती है, श्रीमत् चरणारविंद अत्यंत सुंदर सुरभित कमल पुष्पों के समान चरण जिसका, मकरंद मधु रसे अमृत में आवेशित डुबाया हुआ, चेतस जिनके चित्त भागवत भक्तों की, परमहंस मुक्त पुरुष, दैत रुचिकर कथाम यशोगान किंचित कभी कभी अंतराय अवरोध से विहिताम अवरुद्ध स्वाम आपने सीवतमाम अत्यंत शुभ पदवीम पद को ना नहीं प्रायेण प्राय हिन्वंती त्यागते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है, ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है तथा जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। तात्पर्य, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा के दोनों कथनों को स्वीकार किया। पहला तो यह कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त है वह पुनः भौतिक जीवन स्वीकार नहीं कर सकता, और दूसरा यह कि जिसने एक बार भौतिक जीवन स्वीकार कर लिया है वह कभी भी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस दोनों कथनों को स्वीकार तो कर लिया, किंतु साथ ही यह स्पष्टीकरण दिया कि जिस व्यक्ति ने पहले भगवान की कीर्ति मन से स्वीकार की है वह कभी कभी बाधाओं से प्रभावित हो सकता है, किंतु तो भी वह अपनी उच्च भक्ति के पद को नहीं छोड़ पाता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति के मार्ग में दो प्रकार की बाधाएं आती है। प्रथम, वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करना, जिसे वैष्णव अपराध कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को श्री वैष्णव अपराध से बचने के लिए सतर्क किया है, और इसकी तुलना प्रमत्त हाथी द्वारा किए गए अपराध से की है। जब कोई प्रमत्त हाथी किसी सुंदर उद्यान में घुस जाता है तो वह प्रत्येक वस्तु को विनष्ट करके खेत को उजाड़ देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़ा से बड़ा भक्त भी अपराध करने पर अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति शाश्वत है अतः इसे पूर्णतया विनष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी प्रगति को कुछ काल के लिए रोके तो जा ही सकता है। इस प्रकार वैष्णव अपराध भक्ति मार्ग में पहली बाधा है, किंतु कभी कभी भगवान या उनके भक्त अपनी किसी की भक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में जय विजय नामक वैकुंठ के द्वारपाल थे, किंतु भगवत इच्छा से वे निम्न 3 जन्मों तक उनके शत्रु बने रहे। इस प्रकार भगवत इच्छा दूसरे प्रकार की बाधा है, किंतु दोनों ही दशाओं में एक बार कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद विशुद्ध भक्त विनष्ट नहीं होता। अपने गुरुजनों स्वयंभू मनु तथा ब्रह्मा के आदेश से प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्ति योग के पद से उसको हाथ धोना पड़ा। कृष्ण भक्ति तो पूर्ण एवं शाश्वत है, अतः किसी भी दशा में वह नष्ट नहीं हो सकती। क्योंकि इस जगत में कृष्ण भक्ति के पथ पर अनेक भौतिक बाधाएं आती है, अतः कभी कभी उनके अवरोध प्रकट होते दिख सकते हैं। तो भी भगवद गीता में भगवान कृष्ण घोषित करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, एक बार मेरे चरण कमलों में शरण लेने पर उसका विनाश नहीं होता। इस श्लोक में सीवतमाम शब्द अत्यंत सार्थक है। इसका अर्थ है अत्यंत शुभ। भक्ति का मार्ग इतना शुभ होता है कि भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं इसका वर्णन किया है, पार्थ नैव इह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे अर्जुन, भक्त का न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में विनाश होता है। अन्यत्र भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया है कि यह कैसे होता है। तत्र तंग बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदना। कभी कभी भगवान के आदेशों से कोई परम भक्त इस भौतिक जगत में सामान्य पुरुषों की भांति जन्म लेता है। ऐसा भक्त पूर्व अभ्यास के कारण अकारण ही भक्ति में संलग्न हो जाता है। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार की बाधाओं के आने पर भी वह स्वतः अपनी भक्ति में तब तक तत्पर रहता है जब तक कि वह फिर से सिद्ध नहीं हो जाता। श्री बिल्लो मंगल ठाकुर पूर्व जन्म में महान भक्त थे, किंतु अगले जन्म में उनका पतन हुआ और वे एक वेश्या से अनुरक्त हो गए, किंतु जिस वेश्या के प्रति वे इतने आकृष्ट हुए थे उसी के वचनों से अचानक उनकी जीवन धारा बदल गई और वे एक महान भक्त बन गए। सिद्ध भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेने पर मनुष्य का विनाश नहीं हो सकता। कौनते यह प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो भी वास्तविकता यही है कि पापमय जीवन के फलों से पूर्णतया मुक्त होने पर ही कोई भक्त बनता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन पुरुषों ने पिछले जन्म में तथा इस जीवन में पुण्यकर्मों का आचरण किए हैं और जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर निष्ठापूर्वक मरी सेवा करते हैं। दूसरी ओर जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतिर्ना कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां। जो व्यक्ति सांसारिक गृहस्थ जीवन घर कुटुंब स्त्री संतान आदि में अत्यधिक आसक्त है वह कृष्ण भक्ति विकसित नहीं कर सकता। इन बाह्य रूपी विरोधाभासों का समाधान एक भक्त के जीवन में भगवान के अनुग्रह से मिलता है। अतः भक्त को कभी मुक्ति के पथ से भ्रष्ट नहीं होना पड़ता, जिनका वर्णन इस श्लोक में शिव तमाम पदबिम के रूप में किया गया है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान सहगणललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को आज श्री वृंदावन धाम में प्रातःकालीन भागवत कक्षा में विशेष स्वागत है। हरे कृष्ण। तो इसी पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में महाभागवत प्रियव्रत चरित का वर्णन है। पहले श्लोक से लेकर के चार श्लोक तक महाराज परीक्षित ने उनके संदेह प्रकट किए, क्योंकि चौथा अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने उत्तानपाद के वंशचरित को वर्णन करने के बाद उनके बड़े भाई प्रियव्रत के संक्षेप में एक श्लोक बोल दिए। बोले यद्यपि नारद के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने पर भी उन्होंने परम विरक्त अवस्था को प्राप्त करके जंगल में जाकर तपस्या कर रहे थे, गृहत्यागी हो गए थे, लेकिन फिर भी मनु महाराज और उनके दादा पिता श्री ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार दोबारा उन्होंने वापस आ करके घर गृहस्थी किए, राज्य भोग किए। और दो चार साल तक नहीं, 11 अर्बुद साल तक राज्य शासन किए। धन संपत्ति पुत्र दारा के साथ रहे। 11 अर्बुद साल के बाद में पुत्र संतान को संपूर्ण पृथ्वी लोक को, 7 द्वीप को, 7 राजाओं 7 पुत्रों में बांट करके उन्होंने दोबारा फिर भगवत धाम प्राप्त कर गए परम विरक्त होकर के। एक ही श्लोक में बोल दिए, पहले तो त्यागी थे, पहले गृहस्थ हुए, फिर त्याग करके भगवत चरण में चले गए। यही एक ही श्लोक को सुन करके परीक्षित महाराज का मन में शंका हो गया और 4 श्लोक शंका के कारण बोल दिए। बोले सुखदेव जी ये कैसे संभव है, कैसे संभव हो सकता है कि प्रियव्रत महाराज आपने बताते हैं जो नारद जैसे परम सिद्ध देवर्षि परम भक्त आचार्य के संरक्षण में रह करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके और परम विरक्त अवस्था को प्राप्त कर वैराग्य होकर जंगल में जाकर तपस्या कर रहे थे, आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, उनका फिर गृहशक्ति फिर घर में राज्य भोग में आसक्त कैसे हो? और राज्य में आसक्त इतने साल होने पर भी, पुत्र द्वारा संपत्ति पर होने पर भी दोबारा फिर कृष्ण भक्ति, ये विपरीत बोध है। कोई आत्माराम व्यक्ति गृहासक्ति हो जाना, गृह में आसक्त हो जाना, कोई गृहासक्त व्यक्ति कृष्ण आसक्ति में कृष्ण आसक्ति को प्राप्त करना, ये तो हम देखते हैं दोनों विरुद्ध बात है। मायादास नहीं तो कृष्णदास, कोई एक होना पड़ेगा, दोनों में तो हो नहीं सकता। वो दोनों कैसे हो गए? तो इसके उत्तर देते हुए इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी शुरुआत करते हैं बाढ़म इति। बाढ़म मतलब आप जो कहे बिल्कुल सत्य है, ठीक है, यू आर राइट। आप जो बोले कुछ गलत नहीं है, सही बात है। दोनों ही विरुद्धाचर परस्पर विपरीत बात है। जो आत्माराम स्थिति को प्राप्त कर गया, अरे उनका तो क्या, जिन भक्तों के चरण के छाया लेस मात्र से इस विषय वासना दूर चला जाए, भटक नहीं आ सकते, विषय आ नहीं सकता, और उन ऐसे भक्तों का फिर विषय में आसक्त हो जाना, जिनके चरण आश्रय करने वालों का विषय छूट जाए, और ऐसे महाभागवत प्रियव्रत आत्मज्ञान से सिद्ध प्राप्त किए थे उनका कैसे विषय आसक्ति हो गया? और यद्यपि विषय आसक्ति हुआ है, घोर विषय में इतने 11 अर्बुद साल तक रहे, फिर भगवत भक्ति प्रकट हो गया, इतने भक्त सिद्ध स्तर को प्राप्त कर गए, वो कैसे? तो इसको सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले उसको ग्रहण करके बोलते हैं, जो आप कहे बिल्कुल सत्य बात कहे, ये दोनों ही संभव नहीं है, लेकिन जो भगवत महापुरुष गण है जिनका चरित्र को किसी युक्ति तर्क से निर्णय नहीं किया जा सकता, दुर्वितर्क चरित्र जिसका है, कोई तर्क कोई युक्ति के द्वारा निर्णय नहीं कर सकते, वो तो ऐसे ही होते ना, वो नहीं, इसी को कहते हैं श्रीमत भगवत चरणारविंद मकरंद आसक आवेशित चित्त, जिनका श्री भगवान के परम स्वभावमान श्री चरण कमल, श्री चरण कमल नहीं, श्री चरण कमल से निकलता हुआ जो सुधा जो मकरंद है जो मधुरस है, उसको केवल पीते नहीं, पी करके जिनका चित्त बिल्कुल आविष्ट हो चुका है, लग गया है, सट गया जिनका, फिर वो कैसे छोड़े? उसको नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो कैसे छोड़ दिया? अब जिसका छूटा हुआ है, जो ने गृह दार संपत्ति में फंसे हुए, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर ना कृष्णे परतो स्वतो वा मिथ विपद्येत गृहव्रतानाम, जो गृहव्रत धारण किया है तो उनका तो मति कृष्ण में लग ही नहीं सकता। ये दोनों ही बात, ये तो इस स्थिति में थे, फिर इसमें फंस गए, फिर इसमें फंस कर फिर इसमें चले गए। जिसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवत भक्त होते हैं उच्च कोटि के, उनके चरित्र इसी प्रकार नियम कानून से परे हैं, उनको नहीं बता सकते हैं कि कैसे हुए किस ना, या हमारे युक्ति तर्क नियम कानून से परे है, परे है। क्या पता, एक्चुअली संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत कोटि जीव ब्रह्मांड में सबको भगवान ने ऐसे नथ करके चला रहे हैं, जैसे नाक के अंदर वो डालते हैं ना बल के अंदर, क्या नथ, नकेल जो भी कहो, रिंग डाल करके वो खींचते हैं, जैसे पूरे समस्त जगत के समस्त प्राणी के नाथन में छेद करके भगवान पकड़े हुए हैं, इसलिए तो जगन्नाथ है, नाथ करके रस्सी लेकर बैठे हैं, और जहां छिनके मारे में आप कोई बस ही नहीं, असहाय होकर के चलना ही पड़ेगा, सब प्रकृति के रजगुण तमगुण सतगुण तीन रज्जु के द्वारा ये रस्सी के द्वारा इतने जकड़ करके बंधे हुए, नाक में रगड़ के बंधे हुए नकेल के द्वारा, कि किसी का तो स्वतंत्रता को संभव ही नहीं है ना। फल भोगने भी स्वतंत्र नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी निष्काम कर्म आदि शास्त्र विहित कर्म आदि अनुष्ठान करके मनुष्य परम गति के तरफ चलता है, उच्च गति प्राप्त करता है, लेकिन करते करते प्रारब्ध कर्म बस कभी कभी प्रारब्ध जो उपस्थित हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है उसका। हाँ, कभी कभी देखा जाता है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार वो भक्त शरीर प्राप्त किया और बिना कोई लिखाए पढ़ाए भक्ति करने लगा, उनको कोई भक्ति में कोई प्रोत्साहन नहीं किया, कोई प्रीचिंग नहीं किया, कोई गीता बेचा नहीं, उसको कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे भगवान को मन लग गया क्योंकि पहले जन्म का अभ्यास है। तो पूर्वदेही कम पहले जन्म में जो किया था प्रैक्टिस वो संस्कार अभी है, इसलिए खींचा उसी तरफ, उसी तरफ मन लगा, बिना कोई सिखाए पढ़ाए उनका मन लग जाता है, और कोई संग मिला, सहायता मिला तो और आगे बढ़ा। ऐसे बढ़कर के आगे जाते जाते कभी कभी प्राक्तन पूर्व संस्कार के कोई गलत कर्म का फल प्रारब्ध कर्म उपस्थित हो जाता है तो नाटक खड़ा कर देता है, तो उनका कभी कभी सामयिक पतन होना देखा जाता है, हो जाता है पतन। लेकिन ये पतन जब तक वो कष्ट भोग कर्म फल भोग कर मिटा नहीं देते तब तक रहता है, जब तक उस प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है तब दोबारा वही संस्कार फिर आ जाता है, वो मिटता नहीं। वो जो भक्ति के संस्कार हो तो अमिट है, भगवान इसी को कहते हैं कि नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। भक्ति कर्म अविनाशी है, किसी प्रकार से उसको विनाश नहीं किया जा सकता, शाश्वत है। जो थोड़ा सा ही क्या विनाशस्तस्य जाय, तो उसका विनाश हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो थोड़ा सा भी किया वो रहा, लेकिन यद्यपि किसी प्रारब्ध कर्म बस कभी उसका बाधा विघ्न होता है, लेकिन बाधा से वो प्रादुर्भूत नहीं होता, फिर दोबारा उसका संस्कार उसको खींच लेता है। ये अनेक भक्तों के चरित्र में देखा जाता है। जैसे महाराज भरत हम देखते हैं, महाराज भरत उन्होंने भगवत पुत्र थे, भगवान ऋषभ देव की श्रेष्ठ पुत्र थे, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ थे। यहाँ तक कि भगवान ऋषभ देव घोषणा किया अपने सौ पुत्र के सामने, आपको मेरे एब्सेंस में कुछ पूछना चाहिए, कुछ गाइडेंस लेना चाहिए, काउंसलिंग लेना चाहिए, ही इज द पर्सन। बोले ये आपके बड़ा भाई जो भरत है वो बिल्कुल ज्ञान में प्रवृद्ध है, मेरे जैसा ही है। भगवान ने स्वयं उनको रिकनाइज किए, अथराइज किए, और ऐसे भरत महाराज सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे, संपूर्ण सप्त दीपाधिपति थे, इतने बड़े सम्राट थे, और उनके भरी जवानी अवस्था में पुत्र राज लक्ष्मी संपत्ति में घर में सब कुछ था, कोई कमी नहीं था, सुंदरी पत्नी था, देवता इंद्र आदि ऐश्वर्य से और बढ़कर के संपत्ति था, और पुत्र आदि सब थे, सब कुछ था, लेकिन भरी जौवन अवस्था में उनका ऐसा भगवत भाव उत्पन्न हुआ, भक्ति भाव आया, कि विरक्त अवस्था को प्राप्त करके मलबत, शास्त्र में कहा गया मलबत त्याग किए। मलबत मतलब आप समझते होंगे ना, कभी कभी आप टॉयलेट पर डेली जाते हैं, सुबह जा करके थोड़ा कोई बैठते हैं, नहीं यहाँ बहुत अच्छा लगता है और आधा घंटा बैठ जाऊँ, नहीं जितने जल्दी फ्लश मार के जाएं। हाँ, कभी कोई टॉयलेट जाने के बाद कभी पश्चाताप करता है, यार आधा किलो वेट लॉस हो गया, ऐसा तो कोई सोच नहीं रहा ना, नहीं, बहुत आश्वस्त फील करते हो। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से शांति प्राप्त होता है, इस प्रकार त्याग से परम शांति प्राप्त होता है, अरे क्या कहें। तो इस प्रकार तो मलबत त्याग दिए, देखे तक नहीं है, राज संपत्ति पुत्र परिवार को देखे नहीं, भरी जवानी में भरत महाराज छोड़ करके जंगल चले गए, जा करके अपने आराध्यतम भगवान की उपासना करने लगे जंगल में जाकर के। लेकिन जो आपने इतने सुंदर आपने खुद की पुत्र पुत्री शिशु पुत्र के प्रति आसक्त नहीं हुए, उनको ऐसे त्याग करके चले गए, आज प्रारब्धवश, प्रारब्ध तो नहीं था उनका, वह तो इतने बड़े स्तर के भक्त थे, भगवत इच्छावश उन्होंने जंगल में जाकर के एक हिरण के शावक के प्रति इतने आसक्त हो गए। हाउ कैन इट पॉसिबल, जो आपने बेटे के प्रति आसक्त नहीं हुए, जो तोतली तोतली बोली ऐसे चलते रहते थे, आपने स्वपुत्र के प्रति आसक्त नहीं हुए, एक चतुष्पद चार पैर हिरण के प्रति आसक्त हो गए, इसको क्या कहा जा सकता है? तो महापुरुषगण कहते हैं, तो इसी प्रकार बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्तों के जीवन में भक्ति में बाधा हो ही नहीं सकता। अप्रतिहता भक्ति को कहा गया, अप्रतिहता भक्ति कभी प्रतिहत नहीं किया जा सकता ना। वो शुरू किया तो किसी भी प्रकार से प्रतिहत, बोलते हाँ बात सही है, किसी काल बाधित नहीं कर सकता, किसी कर्म बाधित नहीं कर सकता, किसी प्रकार और पारिपार्श्विक परिस्थिति बाधित नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे उच्च कोटि के भक्तों के जीवन में देखा जाता है, दो प्रकार के बाधा तो उनको बाधित करता ही है उनके भक्ति को। ऐसे भाव स्तर के भक्त भी दो प्रकार के बाधा से बाधित होकर के भक्ति से हाथ धो बैठ जाते हैं। बोले वो कैसा, ऐसे उच्च स्तर में ना कैसे? बोले एक बाधा है महत अपराध, भक्तों के चरण में अपराध एक बाधा है। बोले वो तो कभी भी हो सकता है, क्या पता कितने सतर्क भी रहो गड़बड़ी तो हो ही जाता है, जाने अनजाने में, अब जानबूझकर नहीं करते हैं, अनजाने में भी हो जाता है। हम देखते हैं रूप गोस्वामी का हुआ था, वो आपने लीला चिंतन में व्यस्त थे, हंस रहे थे, वो आपने देह स्मृति में नहीं थे, भगवत लीला को दर्शन करके हंस रहे थे, लेकिन एक अपाहिज कोई लंगड़ा भक्त था, उनका नजर पड़ी, बोले मुझे देखकर हंस रहे हो तो ओ, और उनको वो देखे ही नहीं, उनको वो देखे ही नहीं, वो मान लिया कि मुझे देखकर हंस रहे, अब हो गया अपराध। लो उनको पता भी नहीं, ना उनको देखे हैं, ना उनको ज्ञान में कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपने लीला स्मरण से हंस रहे थे, लेकिन वो भक्त मान लिया मुझे देखकर हंस रहा है, बस उनके मान्यता मान लिया, ये मेरे मुझे देखकर हंस रहा है, इसके कारण लीला विलुप्त हो गया, गया इतने खतरनाक है। आप किए नहीं कुछ, बिल्कुल ही नहीं किए हैं, लेकिन कोई और मान लिया कि आप किया करके, तब भी खतरा है, अब क्या करें उसके लिए बताओ, हम तो किए ही नहीं। अपना गाड़ी लेफ्ट साइड में पार्किंग में लगा हुआ है, रोड से चार फुट छोड़ करके कोई आकर के शराब पी के मार दे ठोक, अब उसको क्या करें, लोग आकर आपको पकड़ेंगे, आजकल तो ऐसे ही लोग, उसको क्या कहा जाए, बोले ऐसे ही होता है। इसको कहते हैं कि भक्त अपराध, वो कैसे होता है पता नहीं चलता, अज्ञात सार में हो जाता है बिना जाने, और उसको जानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसको ढूंढ ढार के पता लगा करके उसको जगह प्रतिकार नहीं करे तब तक भक्ति गया। लो इतने गड़बड़ अवस्था है, खतरनाक स्थिति है, इसलिए महत अपराध इतने भारी अपराध है। साक्षात महाप्रभु भगवान कृष्ण श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य भगवान स्वयं बोले जितने कोटि के अपराध है ये सबसे प्रथम कोटि, उसको उसको कहा मैड एलिफेंट, पागल हाथी जैसा है ये अपराध। मत हस्ती, पागल हाथी जैसे किसी के बगीचा में घुस गया, कुछ रखेगा? सारा उजाड़ कर खत्म, कुछ भी नहीं रखेगा, कैसे उगेगा? लेकिन क्योंकि ये कृष्ण भक्ति है, वो कभी विनाश हो ही नहीं सकता है, इसीलिए रुक जाता है, नहीं तो पूरा उजाड़ जाता है, तो उसको प्रतिकार करना पड़ेगा। इसलिए महत अपराध तो बहुत भारी है, लेकिन उसको तो हमारे हाथ में नहीं है, हम लेफ्ट साइड में पार्किंग में खड़ा के गाड़ी कोई आके मार दे अपने हाथ में थोड़ी, लेकिन कभी कभी हो जाता है, होने पर भी अपराध का फल भुगतना पड़ेगा भैया, हाँ भुगतना पड़ेगा। अब जब तक उसका अपराध का समुचित कष्ट भोग ना ले, भोग करके जिनके चरण में अपराध हो गया वो मान ले नहीं यार गलती से हो गया छोड़ो माफ कर, वो माफ कर दे और आप अपने कष्ट को भोग ले तब वो फिर विदुरित वो तो फिर रफानम्बा हो जाता है, फिर अपराध मुड़ जाए, फिर भक्ति आ जाता है, फिर आपको पद को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा होता है। जैसे हम देखते हैं उनका हुआ था राहुगण जड़ भरत महाराज, राहुगण से वो कश्मीर के राजा थे, इतने भक्त राजा थे कश्मीर से गंगा सागर जा रहे थे भागवत कथा सुनने के लिए। हाँ वो गाड़ी भी नहीं था, फ्लाइट भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था, वायु रोड जा रहे थे, वो भी गाड़ी नहीं था, वो किस में कहा पालकी, पालकी में, पालकी में कबड़ कबड़ लोग लेकर जा रहे थे उनको, कहार लोग लेकर जा रहे थे उनको, इतनी लंबा रूट, तभी ना रोड था ना ब्रिज था कुछ नहीं था, तभी भी इतनी लंबा रूट राजा हो करके चल करके जा रहे थे, इतने कथा के प्रति आसक्ति था उनका, कथा आसक्त थे, इतने लंबे से आ रहे थे कथा सुनने के लिए, लेकिन पता नहीं था उनको जड़ भरत जैसे महाभक्त बिल्कुल सिद्ध पुरुष जन्म सिद्ध महापुरुष भरत महाराज को जड़ अवस्था में घूम रहे थे, उनको पकड़ करके अपने पालकी में जोत लिया, कहार बना लो लाइक लगो राजा है, और जड़ भरत मना नहीं किए, लग गए, लगे सही आपने स्वभाव के अनुसार काम किए, ऐसे ऐसे टांग उठा करके चले चिटी के इसके लिए देख करके, और ऊपर से जो बैठा है वैसे ऐसे ऐसे होने लगा, भाई नीचे से जैसे होगा ऊपर से ऐसे होगा ना इफेक्ट, यहाँ कज यहाँ इफेक्ट, तो गाली देने लगा, बोला पीट करे सारा कर दूंगा तो चलना नहीं आता है, दुगला पतला खा पी करे इतने हेंकड़ मोटा है, पता नहीं वो तो समझा मैं पालकी कहार जंगल में घूम रहा था हट्टा कट्टा है, पालकी में जोत कर गाली देने लगा मैं पीटूंगा तुझे। जो परमहंस चूड़ामणि जड़ भरत ने जन्म से अभी तक उनके माँ बाप के सामने मुंह नहीं खोला था, बात नहीं किया था, कितने कितने भारी घटना उनके जीवन में हो चुका है, छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार तो ऐसा घटना हुआ उनके सामने सकड़ो मर्डर हो गया, फ्रेश मर्डर, हाँ उनको आदिवासी लोग ने पकड़ कर ले गए थे बलि चढ़ाने के लिए, चले गए उनको पकड़ कर, पहले की बलि पकड़े तो भाग गया था, इसलिए बहुत गाली पड़ा था उनको, उनको जड़ भरत बैठे थे वो किसी को बैठा देता खेत में जगने के लिए, वो अपने बैठे थे खेत में, आके जानवर खा रहा था वो अपने बैठे थे, जानवर भी सोच रहे हैं हमारे तरह एक जानवर है वो हमको थोड़ी भगाएगा, वो सचमुच जानवर की तरह बैठे थे, कोई काम में लगा दे कुछ फर्क नहीं, जड़ थे वो तो, जड़ के जड़ नहीं थे, सब देख रहे थे समझ रहे थे बोल से, किंतु जड़ के अभिनय कर रहे थे, ऐसे पक्के अभिनय कर रहे थे जड़ जैसा बैठे थे, जानवर भी नहीं समझ पाए कि ये जड़ है कि क्या है, तो बोले जानवर है, लेकिन जब आदिवासी लोग देखे बोले रे हमारा जो बलि खस गया था ये आदमी तो बड़े चकाचक है यार, बड़े हट्टा कट्टा है और ऐसे ही बैठा है, तो उन्होंने बहुत सतर्क से चारों ओर से आए 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 खप के पकड़ लिए उनको, पकड़ करे बांध बुंद डाले हाथ पैर सब, जब बांधते रहे से वो सोचे कि छाट पीट करेगा, कुछ नहीं बांधने के लिए हाथ बढ़ा बांध पैर बढ़ा बांध बांध बोले अरे अभी तक हमारा कैरियर में ऐसा देखे नहीं, अभी तक ऐसे आदमी कोई नहीं मिला जिसको हम पकड़ के बांधने जाता है आराम से बोले बांधो, नो रिएक्शन, ऐसे कैसे हो सकता है, आश्चर्य मन में तभी हुआ था जब बांधने पकड़ दे, अभी आश्चर्य करके बांध कर पकड़ जब खींचे, खींचे क्या होता अपना आगे आगे चलता चलो, बोले बलि चढ़ाएंगे नो प्रॉब्लम, मैं बात नहीं कर रहा था, बड़े खुशी से चलो, वो तो आश्चर्य होकर जा रहे थे उनके साथ चला, धीरे 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 उनका ही हाथ ढीला पड़ गया, रस्सी खोल दिए तब भी चला, उनको क्या फर्क पड़ा, चला उनके साथ लेकर के उनको रखाए, हल्दी पानी में नहला दिए, मंदार पुष्प लाकर माला पहना दिए, बोले काल तुझे बलि चढ़ाया जाएगा, मुने खुश था नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं ठीक ठाक, बलि चढ़ेगा हूँ चढ़ूंगा, गला कटेगा हाँ कटेगा नो प्रॉब्लम, बोला काल सुबह गला कटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कुछ खाएगा हाँ खाऊंगा, अरे आपको बोलेंगे काल सुबह गला कटेगा खाने खाएंगे अपने, रोएंगे बैठकर उनको कोई रोने नहीं, बड़े मजे से पूरा थाली भर के परात ला के खाया दो हाथ में खूब खाया, अभी 10 बजे गला कटेगा 9:30 बजे खूब खाया, हाँ हु केयर्स, क्योंकि उनको पूर्ण प्रकार से भरोसा था ये बदमाश मेरा क्या करेंगे, क्या बिगाड़ेंगे, वो मेरा क्या कर सकते हैं। श्री हरि के चरण में इतनी आसक्ति था, इतने जबरदस्त आसक्ति था, संसार के किसी प्रकार के विघ्न को भ्रुखे भी नहीं कर रहा था, कोई केयर नहीं था, केयरलेसली बैठ के खाया, आराम से उनको पकड़ करके पीला कपड़ा पहना करके माला पहना करके तेल फेल लगा कर लेकर गए चकाचक। और जो सरदार था बलि करने के लिए तलवार पजा करके बिल्कुल आया, ला करके देवी के सामने, देवी देखो ये इतनी बढ़िया सुंदर बलि है, आज प्रसन्न हो जाएंगे हम सबके ऊपर रख करके। जब बोले ऐसे रखो जो बद्धा शिला है वहां पर सर रखो, आराम से खा पी कर जाके रख दिया रोमर। तब भी उनका खड़ग उठा चुका है, बाजा बज चुका है, हरिबोल हुलध्वनि हो रहा है, उनको अभी कटेगा एक सेकंड में गला, तब भी उनका भरोसा है कि वो क्या मरा बिगाड़ेंगे, वो क्या। बिल्कुल निडर होकर के बद्ध शिला पर रख दिया गला जा करके, और सच ही यही हुआ। वो उठा करके खड्ग प्रहार क्या करेगा, वो काली देवी स्वयं विग्रह से प्रकट होकर के रेरेकार करके दौड़ पड़ी, आकर उनके हाथ से खड़ग छीन करके उनके सामने खचाखच ताजा मर्डर ऑन द स्पॉट, ब्लड का फवारा निकला उनके उनके सामने। वो भर सर रखे थे उठकर खड़े हुए, देखे सब मर रहे हैं, काट रहा है मैया सब काट रहा है, काट कुट के ना उनको थैंक यू बोले ना उनके लिए आहा चूचू क्यों किए, कुछ नहीं किए, चुप से ब्लड में इसे छप छप करके बाहर निकले। वो इतने मर्डर होंगे तभी भी नहीं मुंह खोले, ना काली माता को बोले मैया थैंक यू वो भी नहीं कहे, कुछ भी नहीं कहे, वहां से उठ करके वापस आ गए, आकर जंगल में फिर घूम रहे। नो फर्क, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इतने सारे कांड करके आ गए हूं। अब उनको राहुगण ने पकड़ करके पालकी में जोत लिया, वो जा रहा था, अभी इतने साल हो गए जवानी नहीं खोले थे जन्म से, आज राहुगण ने जब बोलने लगा ऐसे उत्पटंग बात बोला पिटूंगा ये करूंगा, तब मुंह खोले। जानवर जैसा रहने वाले, ना कभी कपड़ा पहनते थे, ना गमछा, ना कुछ भी नहीं था, पशु की तरह रहते थे। आज मुंह खोले, मुंह खोले तो ऐसे वाक्य कहे, राजा तो पालकी के ऊपर से 105 बुखार हो गया, पसीना उतर गया उसका, बोला माय गॉड हु इज दिस फेलो, ये कौन है ये। तुरंत पालकी से कूदा, हाथ जोड़कर बताया, बोला आप कौन है, मैं जो थोड़े बहुत सुना था कथा भागवत क्लास सुना था, मुझे लगता है कि उसके सार तो आप ही कह रहे हैं, आप साक्षात कपिल भगवान तो नहीं है, कौन है आपने। अगुड़लिंगम, जन्म से तो पशु की तरह घूम रहे, ना जेनी डाले ना कंठी डाले, नथिंग, कुछ भी नहीं पहचान, कोई पहचान ही नहीं था, लेकिन वाणी से इतने उत्कृष्ट वाणी निकला तो राजा का चक्कर आ गया, पसीना उतर के बोला, बोले मैं किसी को नहीं डरता हूं, लगता है कि आप महाभागवत है, ब्रह्म कुलाभिमानम, मुझे बहुत डर लगता है, भक्तों के अपराध नहीं हो गया, कोई भक्तों के चरण में अपराध हो गया सारे सर्वस्व नाश हो जाएगा, कुल नाश हो जाएगा, जन्म जन्म तक उजड़ जाएगा, क्षमा करो क्षमा करो, चरण तो क्षमा कर दी। इतने बड़ी महत अपराध हो गया, जड़ भरत जैसे महासिद्ध भक्त भागवत भाव भक्त के चरण अपराध कर डाला, इतने गाली पिटाई करने के लिए गाली दे रहा था, लेकिन जैसे चरण में पड़ गया गिड़गिड़ाया सब माफ कर दिया, फिनिश हो गया, हो गया। फिर इन्हीं की कृपा से मुक्ति लाभ किया, जिनको मारने पीटने के लिए बोल करके पालकी में जुता था, आज इन्हीं के कृपा से गया नहीं गंगा सागर, वहीं पे उन्हीं के कृपा से भगवत भक्ति लाभ हो गया, मुक्ति हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गया, ऐसे ही होता है, उन्हीं के कृपा से हो गया। बिल्ल मंगल ठाकुर इतने बड़ी उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, लेकिन क्या करे, पहले से भी जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, विवाहित थे, बड़े सत्पुरुष सत्कर्मा सब कुछ ठीक ठाक था, वैदिक ज्ञान था, बड़े राग रागण का बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी महापुरुष थे, लेकिन प्रारब्ध के कारण, पूर्व संचित कर्म कारण एक वैश्या के प्रति आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हुए, आप लोग सब सुने हैं विल्ल मंगल चरित में, कि कोई हद हो जाएगा, आपने घर में अपने पिताजी मर गए उनके लाश पड़ा है, सारे घर वाले गांव वाले बोलते हैं पिताजी के लाश पड़ा है, उनके क्रिया शुद्ध कर्म दाह संस्कार करो, नहीं किया, पत्नी आकर के रो रही है, पति तुम क्यों मुझे छोड़ करके कि बेसिया के पास जा रहे हो, घर में अवस्था सारे संपत्ति लूट रहा है, उनको उठा कर हट मैंने क्या करता अपने पत्नी के धर्म, वो तो सुसाइड कर डाली नदी में जाकर खुद गई मर गई हो अपने पत्नी, पिता का लाश घर में पड़ा है, फिर भी वेश्या के प्रति इतना आसक्त, गांव वाले अपने सारे बड़े छोटे साथी संबंधी सब बोलते बोलते इतनी घोर बारिश भयानक बाढ़ चल रहा है, बारिश में भीगते हुए बतास में ऐसे होते हुए चल पड़ा, रात के अंधकार में चल पड़ा, उनके पत्नी के डेढ़ बड़ी बहकर जा रहा था नदी में, नौका ही नहीं था, पार कैसे होगा भरी नदी को, कोई उपाय नहीं देखा, नदी में कूद पड़ा, ये देखा कि सब बहकर आ रहे, उन्हीं के पत्नी का सब था, उसी में बैठ करके नदी पार कर गया, पार करके गया रात ही अध में, और चिंतामणि के घर में हो तो बोला भयंकर रात ही साइक्लोन वेदर है, बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, वो छात के ऊपर सेकंड फ्लोर में बैठी एक वाड़ दे करके, और सीढ़ी कोई नहीं था, ना लिफ्ट ना सीढ़ी कोई था, ना दरवाजा बंद था, सीढ़ी घर का जो दरवाजा बंद था, चारों तरफ बाउंड्री घुमा कैसे ऊपर, जब पागल हो गया जाने के लिए, देखा कि बारिश के कारण सांप लटक रहा था, वो सांप को रस्सी समझ करके सांप को पकड़ कर चढ़ गया, अब जानते हैं सांप को पकड़ेंगे सांप बिल्कुल बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, और बोला हार्ड रस्सी है, पकड़ कर सांप को चढ़ गया, काला नाग को पकड़ करके छात ऊपर में चढ़ गया, जाकर चिंतामणि के दरवाजा इतनी जोर से पीटा, बोला रात आधी रात में साइक्लोनिक वेदर कौन आया, खोल कर देखा गिर के अंदर मिल्ल मंगल ठाकुर, चिंतामणि तो उन्हीं के सिखाए हुआ पद को गा करके कृष्ण भक्ति में सरोवर हो रही थी कि कैसा पद मुझे सिखाए, मिल्ल मंगल ठाकुर उनको सिखाए थे अपने रचित पद को, तो उसी से भक्ति में थी, इस अवस्था से विष्णुमंग देखकर अब कैसे आया, जब सुना उनको गाली देने लगा, बोला धिक तेरे जीवन को, इतनी अवस्था में आकर के इस क्षार इस शरीर के लिए, इस दुर्गंध पोती गंध शरीर के लिए आप इतने आसक्त होकर इस पागलपन दौड़ कर आया, नदी पार होकर के बारिश में सांप को पकड़ के चढ़ के आकर आते अधम आया, अगर इतने प्रयास इतने परिश्रम इतने उच्छा आपका उमंग आपका अंदर होता कृष्ण के प्रति तो कृष्ण प्राप्ति हो जाता, तो क्या करता है, यही जीवन के लक्ष्य है, चिंतामणि से डांट करके बोली, तो वही डांट ने उनके बुद्धि सुधर गया, वहीं से दोबारा विल्ल मंगल ठाकुर बने, और बोलते हैं कि आ गए रास्ता में दोबारा फिर गड़बड़ी हुआ, एक स्त्री ने स्नान करके पानी लेकर आए थे उनको नजर पड़ गया, फिर उनके पीछे फंस गए, अब जाकर के उनके घर में उनके मांग करके उनके पति भी महापुरुष थे, बोले देव उनको जब देखा कि मेरा फिर पतन हो रहा है, ये इतने महापुरुष अपने स्वयं पत्नी को बोलते हैं उनके पास जाओ, तो उन्हीं से मांगा, बोला क्या चाहते हैं, आपके बाल में जो कांटा है ना, कांटा होता ना बाल में, हेयर पिन, बोला दोनों हेयर पिन दे दो, क्या हेयर पिन क्या करेंगे, अब जस्ट दो ना मुझे, आप प्रतिज्ञा के देने के लिए दे दो, पति पत्नी दोनों खड़े हैं, सर से हेयर पिन निकाल करके दी, उन्हीं के सामने बोला रहा, बोला हे बिल्ल मंगल तू ऐसा था फिर फंस गया, चिंतामणि के डांट से सुधर के आया था लेकिन फिर भी काम के प्रभाव से इस आंख ने तुझे फिर धोखा दिया, इस आंख ने तुझे फिर धोखा दिया, बुद्धि खराब किया, ऐसे कहकर दोनों पिन आंख में आपने हाथ से फोड़ दी, उनके सामने वो तो अरे अरे क्या कर रहा क्या कर, फोड़ दिया आंख, दोनों आंख फुटा दिया, खोद फोड़ दिया, फोड़ करके दोनों आंख से अंधे होकर के रो रो कर कृष्ण के लिए चला, और आया कृष्ण के पास, और कृष्ण उनके साथ दिए, इतने लंबी उम्र तक रहा, कई के महापुरुष को 700-800 साल तक रहा उन्होंने कृष्ण के पास, ऐसे अंधे मिल ऐसे स्थिति की प्राप्त करते, तो भगवान क्या जाने किस भक्त से क्या काम किस प्रकार कैसे क्यों निकालेंगे, ये उनको पता है, वही चलाने वाले, कभी कभी भक्त अपराध महत अपराध होने के कारण तो हो जाता है फिर मिट जाता है, लेकिन जो दूसरी प्रकार की बाधा होता है भक्ति में वो और खतरनाक है, वो क्या है, ये भगवत इच्छा, भगवान स्वयं उच्च कोटि के भक्तों के भक्ति में बाधा डालते हैं, हाँ अरे क्यों डालते हैं, भगवान की मर्जी, उनको तो क्यों नहीं पूछा जा सकता, अरे तुम्हारे प्राप्ति करने के लिए तुम्हारा भक्ति करता हूं, भक्ति करता है तो थोड़ा बाधा डाल देते हैं, क्यों ना भक्ति की ओर तेज करने के लिए बढ़ाने के लिए, प्रीति को और प्रेम को वृद्धि करने के लिए भगवान कभी कभी इसे डाल देते हैं मजा चखने के लिए। भगवान बड़े रसिक है, मजा चखाने के लिए थोड़े और उत्साह को वृद्धि करने के लिए, प्रेम प्रीति की वृद्धि करने के लिए कभी कभी बाधा डाल देते हैं। और कभी कभी भक्तों को और भक्तों के अनुयायियों को शिक्षा प्रदान के लिए बाधा डाल देते हैं। जैसे श्री राजर्षि भरत, उनका जो मृग शावक के प्रति आसक्ति हो जाना, ये उनका तो कोई महत अपराध तो था ही नहीं। क्या था उनका? कुछ नहीं था, भगवत इच्छा ही कारण था। भगवान जानबूझ करके उनको मृग शिशु के प्रति आसक्त करा दिए, करा करके सारे हम जैसे नालायक को शिक्षा देने लगे। बोले अरे मूर्ख, भक्ति कर रहा है होशियार, कभी भी कोई जड़ वस्तु के प्रति आसक्ति ममता नहीं करना, नहीं तो राजर्षि भरत के पद से भी पदच्युत हो जाते हैं। केयरफुल, हमको सावधानी करने के लिए उनके द्वारा ये शिक्षा देने के लिए उनको बाधा दिया दे। लेकिन ये बाधा से हुआ क्या? यद्यपि भरत महाराज पतित हुए, मृग शरीर को प्राप्त किए, लेकिन जो मनुष्य शरीर में जितने भक्ति नहीं किए थे, उनसे और तेज भक्ति हिरण के शरीर में करने लगे। हिरण के शरीर में उन्हें भक्ति का तीव्रता बढ़ गया, कुछ घटा तो कुछ नहीं। और उस तीव्रता के कारण तुरंत तीसरे जन्म में एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए। जन्म से इतने ज्ञान, इतने समझ था, जन्म के समय से सतर्क हो गए, सो केयरफुल, मुंह नहीं खोले, जवान नहीं खोले, जड़ बन के रहे और सिद्धि प्राप्त कर लिए। ऐसे ही होता। और यहां महाभागवत प्रियव्रत चरित्र में देखते हैं, प्रियव्रत महाराज का संसार वैराग्य हो चुका था, विरक्ति दशा को प्राप्त कर चुके थे, नारद मुनि के शिष्य थे, कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं थे, सबसे एक्सपर्ट गाइड थे उनके। और उनको जंगल में ले बैठा करके नारद जी एकांत में आत्मज्ञान दे चुके थे, कोर्स कंप्लीट था उनका, हाँ कोर्स कंप्लीट कर चुके थे। करने के बाद में अच्छा खासा डिग्री लिए थे, डिग्री लेने के बाद में दोबारा गृहशक्ति, आत्माराम स्थिति से फिर गृह राम हो जाना, कैसे? इसी में भगवत इच्छा, उनका भी कोई अपराध नहीं था, वही भगवत इच्छा से क्या न भगवान ने यह शिक्षा देना चाहते हैं कि भले कभी कभी उच्च कोटि के महापुरुष गण, अति बड़े बड़े गुरुजन लोगों का आज्ञा यद्यपि भक्ति के लिए अनुपयोगी सिद्ध होता है, भक्ति के लिए अनावश्यक है, अनुपयोगी है, लेकिन फिर भी अवश्य पालनीय है। इसको शिक्षा देने के लिए प्रियव्रत महाराज के चरित्र में इस प्रकार के भगवान ने प्रदान कराए। प्रियव्रत महाराज को उनके पिता श्री स्वयं हुए मनु आकर के बोले बेटा है नहीं, आपको जाकर राजा संभालना पड़ेगा, उत्तानपाद के ये दशा है। वो नहीं मान रहे थे क्योंकि एक महापुरुष तो एक महाभागवत नारद जी उनके गुरु जी, और उनके पिताजी भी एक महाभागवत है, द्वादश महाभागवत महाभजन है। और वो उन्हें पिता के फोन किए, उनके पिताजी भी आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आकर समझाए, दो महाजन आकर के मनु और ब्रह्मा दोनों मिल करके अब नारद जी को तो हाथ जोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ा डबल। तो ऐसे ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े देवता जिनके आज्ञा के अधीन है, ऐसे ब्रह्मा आकर जब बोल रहे हैं तो भले भक्ति के लिए अनुकूल ना भी हो, लेकिन फिर भी उनके आज्ञा को पालन करना अवश्य कर्तव्य, ये शिक्षा देने के लिए प्रियव्रत महाराज राजी हो गए। फिर घर में वापस आकर के गृह आसक्त बनकर राज्य शासन करने लगे लंबे समय तक। ये शिक्षा दिए कि यद्यपि कभी कभी गुरुजन और महापुरुषों के वचन भक्ति के अनुपयोगी हो, फिर भी पालनीय है, करना चाहिए। अगर आप किए हैं तो आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा, अंत में काम बन जाएगा। बोले कैसे काम बन जाएगा? बोले क्योंकि जो भगवत चरण कमल के आसक्त है, उनका चरण कमल जो रस निकलता है उसको पी करके टेस्ट करके जो चख चुके हैं, वो तो उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी कारण से अगर चला भी जाता है, जैसे कोई व्यक्ति अब साक्षात गंगा जी के किनारे उनके पास है और ठंडी ठंडी मीठा जल से बिल्कुल क्लीन क्लियर गंगा जल में डेली डेली गोता लगाता है, नहाता है मजा से, अपने घर के सामने गंगा जी के नहर चलता है। अब उनको हटाकर ले जाओ राजस्थान में जहाँ पानी नहीं, कुआं भी नहीं,
एक गड्ढा दो साल का पानी बचा हुआ काई जमा हुआ उसमें बोला इसमें नहा लो, वो पसंद करेगा? नहीं, नहीं जाएगा। अरे जो भगवत चरण के रस को पी लिया वो गृहस्थ पिएगा? नहीं हो सकता। जो कृष्ण दासत्व प्राप्त किया माया दासो हो ही नहीं सकता। ये संसार, ये पुत्र परिजन संबंधी सब माया के द्वारा रचित है, इस माया का है। और जो इसमें फंसा है वो माया फंस ही नहीं सकता, माया दूर रहेगा। लेकिन फिर भी जानबूझ करके वो आ जाते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। उनको माया से इस प्रकार के करने पर भी माया को पता है कि मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उनको भी पता है मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हम भले हमको देख नहीं समझ नहीं पाए, उनका कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, और टाइम पर फिर निकल जाएंगे, ठीक निकल जाएंगे, उनको कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। एक पद, एक हिंदी के एक बहुत बड़े महापुरुष हो गए, उनका नाम रहीम, रहीम की एक पद है, वो कहते हैं, कहे रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष नहीं व्यापत लपटते रहे भुजंग। बोले चंदन के पेड़ में क्योंकि बहुत ठंडाई है और सुगंध है, तो इसलिए बड़े बड़े विषधर सर्प जाकर लपटते हैं, सुगंध भी मिलता है और ठंडाई मिलता है, विषधर सर्प जाकर के लपट के रहते हैं, पूरे शरीर में चंदन पेड़ में सर्प लिपटे हुए हैं, लेकिन सर्प का कोई कुटिल प्रभाव चंदन में पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, वो अपने सुगंध और शीतलता में बरकरार रहेगा। क्यों? कि उनके स्वभाव उत्तम हो चुका है। इसी को कहते हैं कहे रहीम उत्तम प्रकृति, जो इस प्रकार उत्तम चरित्र को, उत्तम प्रकृति को प्राप्त कर चुका है, उनको सकुड़ सांप भी कुटिल संग जाकर करे, सकत कुसंग भी कुछ ना बाल बका करे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करना ही जरूरी है, नहीं तो हम जैसे नालायक स्थिति में करने जाएंगे तो वो कहाँ गिर के पड़ेंगे। तो नहीं, जो इसे इस उच्च कोटि के महापुरुष महाभागवत चरित्र में इसे देखा जाता है, यद्यपि उनके इस प्रकार देखा जाता है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर निकल जाएंगे। लेकिन हम भी ऐसा नहीं करेंगे कि ठीक है पत्नी होगा कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं नहीं, ऐसे प्रकार दुस्साहस हमको नहीं करना चाहिए। इससे हम सीख लेना चाहिए कि जब इतने उच्च स्तर से भी माया कबलित कर सकता है तो हमको कितने केयरफुल होना चाहिए, ये शिक्षा लेना चाहिए, ये सतर्कता अवलंबन करना चाहिए, और बहुत सतर्कता से, बड़े सावधानी से भगवत भक्त के अनुगति संग्रहण में रह करके, अनुगत रह करके भक्ति में अग्रसर करना चाहिए। यही भागवती शिक्षा है। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की गौर हरि प्रमानंद।